वहीं आहान और ध्रुव जल्दी ही एक साथ सुमित के होटल में बैठे थे। सुमित उस वक्त अपने होटल के वीआईपी रूम में था। आहान और ध्रुव ने उसे अपने आने की खबर नहीं दी थी। आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला, यार सच बताऊं तो अब मेंशन जाने का दिल नहीं करता। पता नहीं ये सब क्या हो गया है। आस्था भाभी कुछ दिनों के लिए हमारी जिंदगी में खुशियां भर के चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद सबके दिल पूरी तरह से उदास हो गए। और ध्रुव, मैं तुझे एक बात बताऊं, आज जब राजेश ने अरमान भाई को बताया कि आस्था भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। कहीं ना कहीं तो मेरी बात मान या ना मान, मुझे यही लग रहा है कि अरमान भाई के दिल में भाभी के लिए फीलिंग्स हैं। अगर हम इन फीलिंग्स को हवा दें तो हो सकता है कि भाभी हमेशा के लिए घर लौट आएं और हमारे घर में एक बार फिर खुशियां आ जाएं। जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव की आंखों में भी चमक आ गई। वो बोला, शायद तो ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। फीलिंग्स तो हैं अरमान भाई के दिल में, क्योंकि तूने देखा नहीं, जब मैंने आस्था भाभी का हाथ पकड़ा था तब अरमान भाई किस तरह से सुलगती हुई आंखों से हमें देख रहे थे, मानो आंखों ही आंखों में हमारा मर्डर कर देंगे। आहान ने जल्दी ही ध्रुव के कानों में कुछ बताना शुरू कर दिया। ध्रुव जैसे जैसे आहान की बातें सुन रहा था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आहान का सर पकड़कर उसके माथे को चूमा। वो बोला, जिस तरह से कल तू बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, खाने पीने की बातें कर रहा था, मुझे तो लगा था कि तेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भूसा ही भरा हुआ है, लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया भी आ सकते हैं, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। ये बोलते हुए ध्रुव मुस्कुरा दिया और जल्दी ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन दोनों को हंसते हुए देखकर दो आंखें बड़ी ही सुकून भरी नजरों से देख रही थीं। वे आंखें किसी और की नहीं बल्कि सुमित की थीं। सुमित उस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा था। जल्दी ही उसके पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन उसके होटल के मैनेजर का था। सुमित ने बहुत पहले ही अपने मैनेजर और होटल के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जब भी उसका कोई दोस्त या भाई वहां आए तो वे उसे उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि सुमित उनके सबके लिए अच्छी तरह से इंतज़ाम करता था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाता था। जैसे ही सुमित को पता चला कि ध्रुव और आहान उसके होटल में आए हैं, वो उन्हें देखने के लिए वहां आया था। दोनों को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखकर सुमित भी मुस्कुरा दिया, वरना सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अंधेरे में डूब गए थे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को रश्मि की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए ध्रुव और आहान जल्दी ही दोनों रश्मि से मिलने के लिए रवाना हो चुके थे। अगली सुबह आस्था जैसे ही सोकर उठी, उसे सबसे पहले रश्मि का ख्याल आया। वो रश्मि से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी फ़ोन घर में दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपने मामा से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर जाने लगी, ताकि उनका फ़ोन लेकर वो डॉक्टर रश्मि से बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गई, उसे अंदर से उसके मामा मामी के झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसके मामा उसकी मामी से कह रहे थे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, उसे आए अभी एक ही दिन हुआ है और तुम चाहती हो कि मैं उससे बोलूं कि वो नानी माँ को लेकर गाँव में चली जाए, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तुम पागल हो गई हो। तब सीमा जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं उस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और देखो उसने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। अरे मैं तो कहती हूँ, कौन इसके आगे तक की फ़ीस भरेगा, भले ही उन अमीर लोगों ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया हो, लेकिन आगे की फ़ीस कौन भरेगा, इसके बारे में सोचा है, हम अपनी बेटी की फ़ीस भरेंगे कि इस लड़की की भी फ़ीस भरेंगे, ऐसा कहकर सीमा जी मनोज को सुनाने लगी थी। आस्था का दिल कतरे कतरे हो गया था। अपने मामा मामी की इस तरह की बातें सुनकर शारदा जी यानी उसकी नानी माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये सारा ड्रामा इनका सुबह 5 बजे से चल रहा है, तू तो जानती है कि मुझे सुबह कितना जल्दी उठने की आदत है और जब मैं उठी तभी से दोनों का झगड़ा चालू था, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, हमें किसी के सहारे की किसी के एहसानों की कोई ज़रूरत नहीं है। नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और मनोज और सीमा के दरवाजे पर खटखटा दिया। मनोज और सीमा किसी के दरवाजे पर आने पर चुपचाप खड़े हो गए थे। जैसे ही मनोज ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को देखा, उसने अपना सर झुका लिया। शारदा जी उन दोनों की ओर देखकर बोली, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गोरी ना तो कल किसी पर बोझ थी और ना आज किसी पर बोझ है। नानी माँ आस्था को प्यार और मोहब्बत से गोरी बुलाया करती थी। मनोज हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सीमा को यही समझा रहा था कि अभी कुछ दिन आस्था यहाँ रहेगी, उसके बाद तो आप दोनों गांव जा सकती है ना। कहीं ना कहीं मनोज जी ये बात कहने में थोड़ा सा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी माँ ये बात न कह दे कि आस्था को पहले तो उन्होंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और अपनी बेटी के भाग जाने पर आस्था को बलि का बकरा बनाकर उसकी शादी अरमान से ज़बरदस्ती करवा दी और अब उन्हें दो ही दिनों में आस्था बोझ लगने लगी है। नानी माँ अपने बेटे की ओर देखकर बोली, मैंने तुझे पैदा किया है, 9 महीने अपनी कोख में पाला है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कि तू कब और क्या चाहता है, और रही बात तेरी बीवी की, तेरी बीवी तो पराए पेट की है, फिर भी मैं उसके तेवर अच्छी तरह से जानती हूँ, समझा तू,
और रही बात मेरी गोरी की, मैं अपनी गोरी के साथ हूँ, मैं अपनी गोरी का ख्याल रख सकती हूँ और मेरी गोरी मेरा ख्याल रख सकती है। और एक और बात, कान खोलकर सुन ले मनोज, मैंने अपनी गोरी को अकेले इतना बड़ा किया है और मैं इसका आगे भी ख्याल रख सकती हूँ, समझा? तो हमें तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम यहाँ से गांव चले जाएंगे, मेरी गोरी अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन वगैरह अपना चेक कर ले, उसके बाद हम अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिन तक तुझे तेरी माँ भारी नहीं लगेगी। ऐसा कहकर शारदा जी ने तुरंत आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। सीमा जी का चेहरा खिल उठा, भले ही उसकी सासू माँ नाराज है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए तो बस खुशी की बात यही थी कि आस्था आखिरकार यहाँ से जा रही थी। दादी माँ ने खुद उसके मुंह पर आकर बोल दिया था कि 3 दिनों के बाद वो यहाँ से चली जाएंगी। आस्था अपनी नानी माँ का साथ पाकर उनके गले लगकर सिसक कर रो पड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके मामा मामी अब इस तरह का बर्ताव करेंगे। उसने तो सोचा था कि उसे देखकर सब खुश हो जाएंगे और राजी खुशी वो अब एक साथ रहेंगे और प्रियंका के साथ वो कॉलेज ज्वाइन करेंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया था। डॉक्टर रश्मि से बात करने का ख्याल भी उसने छोड़ दिया था। वो सोचने लगी कि 3 दिनों के बाद कॉलेज ज्वाइन करके वो अच्छी तरह से सारी चीजें देख लेगी, कैसे कब क्या किया जाए, कब कब कॉलेज जाना है, और उसके बाद हो सकेगा तो वो कोई किराए का कमरा लेकर यहाँ रह लेगी, वरना गांव चली जाएगी, और उसके लिए उसे कोई पार्ट टाइम नौकरी की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आस्था अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ आगे का सोचने लगी थी।
दूसरी ओर आकाश जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था और उसका सामना सबसे पहले टाइगर से हुआ। टाइगर तुरंत आकाश के गले लग गया और उससे अलग होते हुए बोला, आकाश भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। टाइगर की बात सुनकर आकाश का ख्याल अपने फ़ोन की ओर गया और बोला, सॉरी टाइगर, मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे अरमान इस वक्त कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। टाइगर बोला, मैं भी तो किंग के बारे में ही आपसे बात करना चाहता था। आकाश भाई क्या हुआ है, किंग इतना बेचैन क्यों है? वो अभी इस वक्त गार्डन में है, उनके शरीर में आज अलग तरह की बेचैनी है, इस बेचैनी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आकाश ने एक नज़र टाइगर की ओर देखी और अगले ही पल बोला, मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी ही अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था। अरमान उस वक्त गार्डन में बैठा हुआ था, आकाश को अपने सामने देखकर पूछा, क्या बात है आकाश, बोलो। तब आकाश ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और फिक्र भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि आस्था के जाने पर तू बहुत परेशान है। जैसे ही आकाश ने ये कहा, अरमान ने तुरंत उसका हाथ छटक दिया और उससे बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आकाश, भला उस आफत लड़की के जाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जाती है तो जाए, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात वो जुबान से बोल रहा था, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। अरमान बोला, तुम यहाँ मुझसे ये बात करने के लिए तो नहीं आए हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, यहाँ किस लिए आना हुआ। आकाश ने अरमान को सारी डिटेल्स दिखाते हुए कहा, डेविड और मारिया यहाँ बैंगलोर में आ चुके हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वसुंधरा रायचंद ने तुम्हारी सुपारी डेविड को दी है। जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसकी आंखें अचानक से ही खूंखार हो गई थीं। टाइगर तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया था, उसने भी ये बात सुन ली थी कि अरमान की सुपारी डेविड को दी गई है। वो वहां आकर बड़े ही सनकी स्वर में बोला, कौन है ये डेविड, मैं मिलना चाहूंगा, इससे पहले कि जो मेरे किंग की जान लेना चाहता है उसे मैं अब अपने हाथों से ही मारूंगा। ये कहते हुए टाइगर एक अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। अरमान एक गहरी सोच में डूब गया था और सीधा अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर जल्दी ही वो एक फोटो की ओर देखने लगा था और नफरत से एक गमला उठाकर उसने उसे फोटो पर दे मारा था। फोटो का सारा कांच पूरे कमरे में फैल चुका था, लेकिन अरमान का चेहरा वैसा का वैसा ही सख्त था। सीमा जी को ये बात पता चल चुकी थी कि अब आस्था यहाँ केवल 3 दिनों तक ही रहने वाली है, इसलिए उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी आस्था को दे दी थी। वो 3 दिनों में जितना हो सकता था उतना काम आस्था से निकलवाना चाहती थी। आस्था ने सबके लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बना दिया था, उसे भी लगा कि 3 दिनों की तो ही बात है, 3 दिनों तक में फिर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेगी। ये सोचते हुए आस्था ने खुशी खुशी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। सभी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की बेल बजी। इस वक्त अचानक कौन आ गया इसके बारे में किसी को कोई एहसास नहीं था। प्रियंका ने बेरुखी से आस्था की ओर देखकर कहा, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। मनोजी बोले, अरे रहने दो, तुम बैठो नाश्ता करो बेटा, हम दरवाजा खोल देते हैं, और वैसे भी हमें ऑफिस जाना है, हमें लेट हो रहा है, दरवाजा खोलकर हम ऑफिस चले जाएंगे, जरूर वो अखबार वाला होगा, वो अपने महीने का बकाया लेने के लिए आया होगा। ऐसा कहकर मनोज जी उठ खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं 3 दिनों में वो आस्था और अपनी माँ के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वक्त आने पर वो एक बार फिर उन लोगों का फायदा उठा सके। जैसे ही मनोज जी ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बेहद हैंडसम से 2 लड़के वहां खड़े हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की थी। जी हाँ, वो दोनों लड़के और वो खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं बल्कि आहान और ध्रुव थे, और साथ में डॉक्टर रश्मि वहाँ मौजूद थी।
मनोज जी, जैसे ही उन लोगों को वहां देखा वो हैरान हो गए, क्योंकि उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनकी सूट बूट देखकर वो समझ चुके थे कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है। मनोज जी थोड़ा सा संभल कर बोले, जी सर बताइए, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, किससे मिलना है आपको? मनोज जी बड़े ही शराफत से बात कर रहे थे। हालांकि ध्रुव और आहान शादी में भी आए थे, लेकिन उस वक्त इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग शादी में आए हुए थे कि मनोज जी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन ध्रुव और आहान ने मनोज जी को देखते ही पहचान लिया था। वे बोले, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ऐसा कहकर ध्रुव ने मनोज को गले से लगा लिया था और साथ ही साथ आहान भी उसके गले से लग गया था और बोला, अरे हम हैं, हम यहाँ भाभी से मिलने के लिए आए हैं।